सृष्टि परेशान सी एक ही सांस में सब बोल गई। रेहान उसके चुप होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सृष्टि खामोश हुई, रेहान ने शांत लहजे में जवाब दिया, सृष्टि सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है, तो तू इतनी टेंशन मत ले। अब कहीं जाकर सृष्टि की जान में जान आई। उसने गहरी सांस छोड़ी और फिर गंभीरता से बोला, भाई ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बाकी बातें मैं तुझे घर आकर बताऊंगा। बस तू टेंशन मत लियो और ध्यान से सेफली घर पहुंच जाइयो, मैं वहीं मिलूंगा तुझसे। सृष्टि ने हामी भरी। उसके बाद रश्मि से भी कुछ देर बात की, फिर फोन काट दिया। शाम होने को थी। रेहान कुछ देर यहां रुका, फिर घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ ये खबर और शांतनु और आरवी के हॉस्पिटलाइज होने की बात जंगल में लगी आग की तरह हर जगह फैल चुकी थी। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया भारी मात्रा में मौजूद थी। शान और आरवी सुयश जी और अर्पिता जी के साथ हॉस्पिटल बिल्डिंग से बाहर निकले और अपनी गाड़ी तक पहुंचते उससे ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया और शान से ढेरों सवाल करने लगे, जैसे ये कैसे हुआ, हादसा या किसी की साजिश, किस पर शक है उसे। ऐसे जाने कितने ही सवालों को उस पर दागा गया जिनके जवाब नहीं दिए शान ने। उसने कार्तिक को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया तो उसने मीडिया को उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अभी कोई सवाल ना करने को कहा और गार्ड्स की मदद से उनके लिए रास्ता बना दिया। शान और आरवी एक कार में बैठे और दूसरी में अर्पिता जी और सुयश जी बैठ गए। ड्राइवरों ने कार आगे बढ़ा दी और सब वहां से निकल गए। अभी वो कुछ आगे ही पहुंचे थे कि शान का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम चमक रहा था, जिसे अनजाने में ही आरवी ने भी देख लिया और तुरंत ही बोल उठी, भैया को भी इस हादसे की खबर मिली होगी, मेरा फोन नहीं लगा होगा इसलिए आपको फोन कर रहे होंगे, एक बार बात कर लेने दीजिए, परेशान होंगे वो। वैसे तो शान फोन काटने वाला था पर आरवी की बात सुनकर काटते काटते रुक गए और निगाहें घुमाकर उसे देखा, तो आरवी ने रिक्वेस्ट की कि एक बार बात करने दे। शान ने बिना कोई जवाब दिए फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर इतने में फोन कट चुका था। ये देखकर आरवी का मुंह छोटा सा हो गया। वो शान का फोन वापस उसे देने ही वाली थी कि इतने में फोन एक बार फिर बज उठा और इस बार बिना एक पल गवाए आरवी ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो भैया, आरवी की आवाज सुनकर पहले तो अर्जुन चौंक गया पर फिर सब समझ गया और चिंता भरे स्वर में बोला, कैसी है तू, ठीक है ना? जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। और शान कैसा है? अर्जुन का सवाल सुनकर आरवी ने निगाहें घुमाकर शान को देखा, जो सीट से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। वो भी ठीक है भैया, थैंक गॉड कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। मैं तो मीटिंग में था जब अचानक डैड मेरे पास आए और आज थिएटर में जो हुआ उसके बारे में बताया। मेरी तो डर से हालत खराब होने लगी थी। इतनी देर से तुझे फोन कर रहा हूँ पर तूने फोन उठाया ही नहीं, तो हारकर शान को कॉल करना पड़ा। जब सुना कि दोनों ठीक हैं तब जाकर सुकून मिला। हाँ, वो मेरा फोन वही रह गया था, मेरे पास नहीं था। चल कोई बात नहीं, तो और शान ठीक है, बस यही जानना था मुझे। अर्जुन की बात सुनकर आरवी ने एक बार फिर बगल में बैठे शान की तरफ निगाहें घुमाई और गंभीरता से बोली, भैया आपसे एक सवाल पूछूं, उसका सच सच जवाब देंगे? हाँ पूछना, क्या पूछना है? अर्जुन ने तुरंत ही पूछने की इजाजत दे दी पर आरवी सवाल करने में सकुचा रही थी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने सवाल किया, भैया क्या आज जो हादसा हुआ उसके पीछे ठाकुर साहब का हाथ है? शान के कानों में जैसे ही आरवी के कहे शब्द पड़े, उसने चौंकते हुए अपनी आंखें खोल दी और आरवी को देखा जो उसे ही देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मौजूद अर्जुन ने अपने सामने बैठे अमरजीत जी को देखा, जिनकी आंखों में नमी तैर गई थी आरवी का सवाल सुनकर। अर्जुन ने एक नज़र उन्हें देखा फिर इनकार करते हुए बोला, ये कैसी बात कर रही है तू गुड़िया, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि डैड तुझसे कितना प्यार करते हैं। सालों तक तुझे ढूंढने के बाद अब जब तू हमें मिली है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हम फिर से तुम्हें खो दे। डैड ने कुछ भी नहीं किया है और ना ही वो ऐसा कुछ कभी कर सकते हैं। उन्होंने तो कभी शान से भी दुश्मनी नहीं पाली, कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। फिर जब वो जानते थे कि उस जगह तू और शान दोनों मौजूद होंगे तो ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे तुम दोनों की जान खतरे में पड़ जाए। मैंने कहा था ना तुझे कि मैं मीटिंग में था, मुझे तो इन सब के बारे में खबर ही नहीं थी, पर डैड को जैसे ही पता चला वो सीधे मेरे पास आए ताकि मेरे जरिए तुझसे बात हो जाए और ये पता चल जाए कि तू और शान ठीक है या नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि डैड का इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए अपने मन से ये शक निकाल दे। इस वक्त दोनों तरफ फोन स्पीकर पर था। अमरजीत जी आरवी की बात सुन चुके थे और अर्जुन के चुप होते ही बोल पड़े, शायद ये हमारे ही गुनाहों की सजा होगी जो आज हमारी बच्ची अपने पिता पर उनकी जान लेने की कोशिश करने का इल्जाम लगा रही है। सबूत तो नहीं है हमारे पास अपनी बेगुनाही का, पर बेटा यकीन कीजिए हमारा, हमने कुछ नहीं किया है, हम कभी सपने में भी आपको या शान को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते। वो अभी बोल ही रहे थे कि शान ने आरवी के हाथ से फोन छीनते हुए कॉल काट दिया। सारी बातें सुन चुका था और अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आरवी कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं सकी और खामोशी से कुछ पलों से देखने के बाद विंडो से सर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गई। कब वो घर पहुंचे उसे एहसास ही नहीं हुआ, वो अब भी यूं ही आंखें बंद किए और विंडो से सर टिकाए बैठी थी। तभी अचानक उसके कानों में शान की सख्त आवाज पड़ी, घर पहुंच गए हैं हम, अंदर जाकर आराम करो तुम। आवाज सुनकर आरवी ने आंखें खोलकर पहले साइड में देखा जहां अर्पिता जी खड़ी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। फिर उसने सर घुमाकर शान को देखते हुए पूछा, आप नहीं चलेंगे साथ में अंदर, आपको भी तो आराम की जरूरत है। मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना भी पड़ता है, इसलिए मैं अभी थिएटर जा रहा था ताकि हालात का जायजा ले सकूं। कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम जाकर आराम करो। शान की आवाज में थोड़ी सॉफ्टनेस थी पर आंखें सख्त। आरवी चाहती तो नहीं थी कि वो कहीं भी जाए, पर उसके सख्त भाव देखकर उसने बेमन से हामी भरी, फिर बाहर निकलते हुए बोली, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी वापस आ जाइएगा। शान ने कोई जवाब नहीं दिया और आरवी के बाहर जाते ही ड्राइवर को गाड़ी घुमाने को कह दी। ये देखकर अर्पिता जी ने आरवी के पास आते हुए चिंता भरे लहजे में पूछा, आरवी बेटा, शान कहाँ चले गए? आरवी जो जाती हुई कार को देख रही थी, उसने सर घुमाकर उन्हें देखा, फिर उनकी चिंता समझते हुए शांत लहजे में बोली, थिएटर के हालात का जायजा लेने गए हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अर्पिता जी ने परेशान निगाहों से जाती हुई कार को देखा, फिर आरवी को लेकर अंदर चली आई, जहां सुयश जी, सुभाष जी, छाया और उनके साथ नन्ही अंशु भी उसका इंतजार कर रही थी। अंशु तो आरवी को देखते ही आकर उससे लिपट गई। आरवी अपनी सारी तकलीफ भूल गई और झुककर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए उसने प्यार से उसके चेहरे को चूम लिया। सबने उसका हालचाल पूछा, सुभाष जी तो शान के लिए भी परेशान थे। आरवी ने सबके सवालों के जवाब सहजता से दिए, सुभाष जी की चिंता खत्म की, फिर अर्पिता जी ने उसे आराम करने के लिए रूम में भेज दिया।
वहां की पूरी जानकारी लेने के बाद शान वापस घर लौटा, फ्रेश होकर सबके साथ डिनर किया और आज बड़े दिनों बाद वो डिनर के बाद सुभाष जी के साथ बाहर गार्डन में जाकर बैठ गया। आज सुभाष जी अपने बेटे को खोने के डर से जूझ रहे थे। उन्होंने चंद सवाल किए जिनका जवाब शान ने गंभीरता से दिया। उसके बाद उन्हें उनके रूम में छोड़ने के बाद शान अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जब वो रूम में आया तब तक आरवी अंशु को सुला चुकी थी। शान ने एक नज़र आरवी को देखा, फिर बैठ के दूसरे तरफ जाने लगा। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज़ पड़ी, कुछ पूछना है मुझे आपसे। शान ने सर घुमाकर उसे देखा पर बोला कुछ नहीं। तो कुछ पल की खामोशी के बाद आरवी ने ही आगे कहा, आप हमेशा कहते हैं कि नफ़रत करते हैं मुझसे, तो आज बस इतना बता दीजिए कि अगर इतनी ही नफ़रत करते हैं तो अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने वापस अंदर क्यों गए थे आप? ये सवाल तभी से आरवी के दिमाग में घूम रहा था जब से रश्मि ने उसे ये बताया था कि शान ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है, और आरवी तब से मौका ढूंढ रही थी ताकि उससे अपने मन में चल रहे सवाल का जवाब जान सके, और अब जब मौका मिला तो उसने सवाल पूछ ही लिया। अब वो इंतज़ार कर रही थी शान के जवाब का। उसके सवाल को सुनने के बाद शान ने गंभीरता से जवाब दिया, वहाँ काम करने वाले हर इंसान की सेफ्टी का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, और तुम भी वही काम करती हो, तो मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें बचाना, और फिर तुम तो इस खेल का हुक्म का इक्का हो जिसके जरिए मैं जीत अपने नाम करने वाला हूँ, और जो मेरे दुश्मन की हार और उसकी बर्बादी का एकमात्र कारण बनने वाली है, तो जब तक मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। आरवी डबडबाई आंखों से उसे देखती ही रह गई, जबकि शान जाकर अपने साइड में लेट गया और अपनी बाँह को मोड़कर उसने अपनी आंखों को ढक लिया। दिन यूं ही गुजरने लगे। इस हादसे को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। 3-4 दिन बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गए तो स्टूडियो में फिर से रिहर्सल शुरू हो गई। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि शान की इजाज़त के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।